نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، एक दफा फिर हम इंशाल्लाह ताला साल के बेहतरीन दिन देखने वाले हैं, वो दिन के जिनके बारे में सहाबा कराम इंतज़ार किया करते थे। सारा साल उनको इंतज़ार होता था कि वो खूबसूरत दिन कब आएंगे जिनमें कि हम मेहनत के साथ इबादत करें। और ये दिन इबादत करने के भी हैं, इस्तग़फ़ार करने के भी हैं, अपनी गलतियों की इस्लाह करने के भी हैं, अपने अंदर रिफ्लेक्शन करने के भी हैं, देखने के भी अपने अंदर कि मैं क्या, मेरे अंदर कमी है, क्या अभी तक मैं नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए था। जैसे रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रातें जो हैं, 10 रातें, वो पूरे साल की बेस्ट रातें हैं ना। ताक रातें उनमें भी आ जाती हैं, लोग तकाफ भी बैठते हैं। इसी तरह दिनों में, डेज में बेहतरीन दिन, साल के 365 डेज में से जो बेस्ट डेज हैं वो ज़िलहज के दिन हैं, जो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि इन दिनों में कई इबादतें इकट्ठी हो जाती हैं। दिनों में, इन रमज़ान के उन दिनों में तो देखिए रोज़े होते हैं, ठीक है, तकाफ होता है और बाकी नमाज़ें वगैरह, मगर इन दिनों में हज होता है जो बाकी साल में किसी और वक्त में नहीं हो सकता। कुर्बानी हो सकती है, कुर्बानी होती है जो भी किसी और वक्त में नहीं हो सकती। और आप रोज़ा भी रखते हैं और बाकी और बदनी और माली इबादत भी करते हैं, इस लिहाज से ये दिन ऐसे हैं जिनमें कई बातें इकट्ठी हैं। और हमें इन दिनों की फजीलत का अंदाज़ा इस हदीस से होता है जो बुखारी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी दिन का अमल, कोई भी दिन जो है ना, उसका अमल अल्लाह के नज़दीक इन दिनों के अमल से अफजल नहीं है। यानी जो अमल आप इन दिनों में करेंगे ना, उससे ज़्यादा बेहतर किसी और दिन का अमल हो ही नहीं सकता। लोगों ने पूछा, जिहाद भी नहीं? फरमाया, जिहाद भी नहीं सिवाय उस मुजाहिद के अमल के जिसने अपनी जान और माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया, सिवाय उसके। तो ये तो बहुत ही कम ही कोई हो सकता है जो अपना जान भी अपनी लगा दे और अपना माल भी लगा दे अल्लाह ताला की राह में। उसके बराबर जिस जो अमल करेगा उसका अमल हाँ हो सकता है इस इंसान के अमल के बराबर जो इन दिनों में कोई नेकी का काम करता है। अदरवाइज़ कोई इंसान भी इनके इक्वल अमल नहीं कर सकता। जो ये लोग अमल करते हैं नेकी का इन 10 दिनों में। एक और हदीस से इसी तरह की बात मालूम होती है, वो भी बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज्जा के 10 दिनों से बढ़कर कोई दिन नहीं है कि जिसका अमल, नेक अमल अल्लाह ताला को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो इन दिनों को कम्पीट कर सके। यानी कोई दिन में भी आप कोई अमल करते हैं ना, तो वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता जो आप इन दिनों में अमल करते हैं। यानी इसका अमल, इसका अजर इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, और हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग इस चीज़ से वाकिफियत रखते हैं। रमज़ान के मुतल्लिक भी काफ़ी लेक्चर्स भी हो जाते हैं, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इन 10 दिनों के बारे में हार्डली कोई लोग जानते हैं। शायद मे बी 9 ज़िलहज्जा के बारे में तो थोड़ा बहुत लोगों को है शऊर, मगर पूरे 10 दिनों के बारे में लोगों को ज़्यादातर नहीं मालूम कि इन दिनों की इतनी ज़्यादा फजीलत है। और ये दिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में किसी वक्त, अब चांद नज़र आता है उसके मुताबिक कि मिड वीक तक जाके हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए सेहत तंदरुस्ती के साथ, तो देखने वाले हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हम इन दिनों में क्या करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अजर भी तो पा सकें ना। तो इन दिनों को अपने लिए गोल्डन चांस समझे और इनसे पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, यानी प्लान अहेड। ज़रा थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ ऐसे प्लान करें कि आपके ये दिन ज़ाया ना हो। सबसे पहला अमल तो जो आप कर सकते हैं वो तो हज का ही अमल है, ज़ाहिर है। मगर हर एक हज पे जाहिर है नहीं जा सकता और हर साल भी नहीं जा सकता। तो जो इस सआदत से महरूम रह गए, जो लोग नहीं जा सके हज पे, तो वो क्या ऐसा काम करें कि अपने घरों में बैठे हुए वो कोई नेकी के ऐसे काम करें जिनसे अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल हो, जिनसे वो अजर पा सके। तो जाहिर है हज तो बेहतरीन अमल है जो इन्हीं दिनों में होगा। जो घर में बैठे हुए हैं लोग वो क्या करें, पहली चीज़ जो वो कर सकते हैं वो है कि रोज़ा रखें। पहले 9 दिन पूरे के पूरे रोज़े रखें, और ख़ास तौर पे आराफा के दिन का, 9 ज़िलहज्जा का, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया योम आराफा का रोज़ा 2 सालों यानी पिछले साल का भी और नेक्स्ट कमिंग ईयर का भी गुनाहों का कफ़ारा है। पिछले साल के भी पूरे साल के गुनाह आपके माफ़ हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर के भी पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए योम अरफा का रोज़ा तो रखना ही रखना है हमने इंशाल्लाह ताला। बाकी जो पहले 8 दिन है, लोग इसको कुछ नहीं ज़्यादा समझते, हालांकि आपको मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत थी कि पूरे 9 डेज़ रोज़ा रखा करते थे, और एक भी जो रोज़ा रखता है किसी दिन भी, तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला इसका चेहरा जहन्नम की आग से 70 ईयर्स की मसाफत तक दूर कर देगा। 70 साल की मसाफत तक इसका चेहरा जहन्नम की आग से अल्लाह ताला दूर कर देते हैं, यानी इतने फासले तक इसको अवे कर देते हैं, दूर कर देते हैं जहन्नुम की आग से। तो सोचें आप कि जो इंसान 9 दिन रोज़ा रखेंगे तो कितनी मसाफत पे दूरी हो जाएगी उनकी जहन्नुम की आग से। इसलिए ज़रूरी है कि हम जिसको भी अल्लाह ताला तौफीक दे, सेहत है अगर आपकी और आपको कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है लाहक, बाकी के दिन हैं आपके, तो फिर आप ज़रूर कोशिश करें कि इन सारे 9 दिनों में ही रोज़ा रखें। और इसके लिए प्लान भी इसी तरह से करें, ऐसी दावतों को एक्सेप्ट ना करें, ऐसे अपने घर में भी ऐसी कोई दावत ना रखें कि लोगों को उस दिन रोज़ा छोड़ना पड़े, बल्कि इन इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बताइए ताकि उनमें भी अवेयरनेस आई। और अगर आपके कोई लंचेस वगैरह हैं किसी जगह पे, वीकेंड्स पे कोई पार्टीज़ हैं या कुछ हैं, तो लोगों को ज़रूर बताइए। उससे ये है कि आप देखें अजर भी कमाएंगे और लोगों को आप की एक खामोश तबलीग भी हो जाएगी कि आपको पता है ना ये तो रोज़े के दिन है, तो दोपहर का तो खाना बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ ये है कि आप रात का ज़रूर रोज़ा खोलने का इंतज़ाम कर दें, ये भी तो हो सकता है ना, बल्कि आप एक अफ्तारी रख सकते हैं अपने यहाँ। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप दूसरों को कह सकेंगे कि वो रोज़ा रख के आए, हमने अपने यहाँ इफ्तार का इंतज़ाम किया। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन 9 दिनों को हम ज़ाया ना करें। सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं वो है रोज़ा रखना। दूसरा काम है तकबीरात बुलंद करना, अल्लाह का ज़िक्र करना। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सुन्नत बिल्कुल आज ख़त्म हो चुकी है। इस सुन्नत को आप ज़िंदा करें। इन दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि तकबीरात बुलंद करते थे। और आपके सहाबा कराम हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत इब्ने उमर जो थे, बाज़ार में चले जाते थे और तकबीरात पुकारते थे। बाज़ार वाले भी आपके साथ तकबीरात बुलंद करते थे। अब आप ख़ुद सोचें वो समा क्या होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे आज बाज़ारों में तो दूर की बात है, हमारे घरों में ही इस तरह बुलंद हो जाए तो क्या प्यारी बात हो सकती है कि पूरे घर में तकबीरात बुलंद हो रही हैं। और सुभान अल्लाह, वो क्या समा होता होगा कि पूरा बाज़ार तकबीरात से गूंज रहा है, सब तकबीरें पढ़ रहे। और ये जाके क्यों ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे, ताकि किसी को अगर भूल भी गया है तो लोगों को तरगीब हो और वो इनके साथ साथ तकबीरात पढ़े। आज सोचिए अगर हमारे बाज़ारों में ऐसे तकबीरात बुलंद हो तो कोई हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब आए, कोई हो सकता है कि इस तरह की फिर उसके बाद हेरा फेरियाँ और धोखेबाजियाँ हों बाज़ारों में। अल्लाह करे कि वो दिन वापस आए कि हमारे बाज़ारों में भी ऐसे तकबीरात गूंजने लगें। मगर उसके लिए इस सुन्नत को ज़िंदा करना होगा, इसके लिए कोशिश करनी होगी। आप लोग अपने घरों में इन दिनों में ऊंची आवाज़ में तकबीरें पढ़ सकती हैं, बाहर तो नहीं पढ़ सकती मगर घरों में ज़रूर ऊंची आवाज़ में पढ़ सकती हैं। और इसी तरह लोग अपनी मस्जिद में, गलियों में, उठते बैठते लेटते तकबीरात पढ़ सकते हैं। और आप देखें कि तकबीर करने के लिए, आप बुलंद करने के लिए आपको कोई वज़ू नहीं चाहिए, कोई पाकी नहीं चाहिए। आप जिस हालत में भी हैं, इवन यहाँ तक जो बीमार हैं, जो रोज़ा नहीं रख सकते, तो तकबीरात तो बुलंद कर सकते हैं ना, तो तकबीरें ज़रूर बुलंद करें वो। और जैसे कि हदीस में आता है, तो आप इन दिनों में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बस तुम इन 10 दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह ये कसरत से पढ़ा करो। यानी कौन कौन से जिक्र? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को भी तरगीब दिलाएं और उनको भी बताएं कि ये तकबीरें पढ़ने के जिक्र हैं, के दिन हैं, अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद करने के दिन हैं, और पूरा घर मिलके अल्लाह का जिक्र बुलंद करें। फिर कोशिश करें कि इन्हीं दिनों में आप तहज्जुद की नमाज़ का खूब एहतमाम करें। वैसे भी पढ़नी चाहिए आम दिनों में भी, लेकिन चूँकि ये बहुत ही फजीलत वाले दिन हैं और एक तहाई रात तो आपको पता है जब रह जाती है, तो वैसे भी अल्लाह ताला की तरफ से एक पुकार आती है आसमानों से कि कोई है मेरा बंदा जो मेरे से कुछ मांगे तो मैं उसको अता करूँ, कोई है जो मुझसे कोई दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कोई है जो मुझसे बख्शिश चाहे तो मैं उसको बख्श दूँ। तो जब देने वाला सदाएं लगा रहा है तो हम क्यों सोए पड़े हों। फिर खूब इस्तग़फार करें। चौथा काम जो आपने करना है ना, वो है कि आप इस्तग़फार की कसरत ज़रूर करें। वो आप देखिए, जैसे कि कोई भी अमल इन दिनों के अंदर बेहतरीन अमल है तो दुआएं भी तो कबूल होती होंगी ना, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बड़े प्यारे दिन है। तो हर नेकी जो है ना, इसके अंदर चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इनको मामूली नहीं समझना। और इस्तग़फार से ज़्यादा बड़ी क्या चीज़ हो सकती है जो अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। और अल्लाह ताला ख़ुद इंतज़ार फरमाते हैं अपने बंदे की तौबा का, कि वो बंदा पलट आए अल्लाह की तरफ। तौबा मतलब ही पलटने का, वापस आने का। तो हर किस्म की नाफरमानी, चाहे वो खुली है या छुपी है, इससे परहेज़ करना है। अपनी ज़िंदगी पे बैठ के थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करें कि मैं क्या आज तक कर चुकी हूँ। देखिए, थोड़ी देर बैठ के सोचना, थोड़ी देर बैठ कर इस चीज़ को जांचना कि मेरी ज़िंदगी आज तक किन कामों में गुजरी है, मैं क्या क्या ऐसी नाफ़रमानी के कामों में लगी रही हूँ जो अब मुझे पता चलते हैं कि वो अल्लाह की नाफ़रमानी के थे। मैं आज इनसे तौबा करती हूँ। तो ये दिन बेहतरीन है तौबा करने के लिए भी, पलटने के लिए भी, और इस बात का वादा करने के लिए कि आइंदा मैं इन गुनाहों को नहीं करूँगी। कोई नेकी का काम आपने शुरुआत करनी है तो इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात हो सकती है कि जो काम आप बड़े अरसे से सोच रही हैं कि अच्छा मैं ये करूँगी, मैं ये स्टार्ट करूँगी, हाँ इंशाल्लाह करूँगी, हाँ कल करूँगी, हाँ परसों करूँगी, हाँ बस अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ आप स्टार्ट कर ही दूँ, तो इन दिनों से ज़्यादा क्या अच्छा दिन हो सकता है उस नेकी के काम को स्टार्ट करने का। जो भी नेकी का काम आप बहुत दिन से सोच रही हैं उसको आप ज़रूर आप करें, इन दिनों में स्टार्ट करें। अल्लाह ताला आपको इन दिनों में बरकत देगा और अल्लाह ताला को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह वो आपका काम। वैसे तो नेकी का काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, मगर चूंकि ये फजीलत वाले दिन है ना, तो कोशिश करें कि बहुत दिनों से जो पेंडिंग काम है वो इन दिनों में शुरू कर लें आप। ठीक है, और याद रखें कि कोई भी नेकी का काम हकीर नहीं है, छोटा नहीं है। आप किसी काम को भी मामूली ना समझें, छोटे से छोटा भी काम है तो कोशिश करें कि उसको इसी 10 दिनों में स्टार्ट कर लें। जो काम आप कुछ दिन से रोके हुए थे, मसलन किसी को सदका देना है आपने, आज देना है या कल देना है या परसों का सोचा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि ये दिन स्टार्ट हो जाए तो फिर आप इन दिनों तक थोड़ा सा डिले करें, स्टार्ट हो जाए तो फिर आप वो काम, वो सदका या वो खैरात या वो कोई और आपने नेकी का काम करना है तो वो इन दिनों के लिए आप रखें, ताकि इन दिनों में करेंगी तो जाहिर है अजर ज़्यादा मिलेगा। इस तरह कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें, तर्जुमा पढ़ें, तिलावत करें। जो लोग पूरा कुरान पाक तिलावत करके मुकम्मल कर सकते हैं इन दिनों में तो वो ज़रूर मुकम्मल करें इंशाल्लाह, और जो नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप स्टार्ट तो करें ना, तिलावत शुरू तो करें। जहाँ पे मौका मिले अपना कुरान पाक शेल्फ्स में नहीं रखें, बाहर रखें, ताकि जो ही मौका मिले आपने खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। तो इन दिनों के आपने स्पेशल एहतमाम करना है, इनको आम दिनों की तरह नहीं समझना आपने, ये स्पेशल डेज आ रहे हैं आपके लिए। तो कुरान पाक से ज़्यादा और क्या चीज़, कौन सा कलाम हो सकता है जो वो पढ़ने के काबिल हो, जो डाइजेस्ट रिसाले और बेकार की चीज़ें जिनसे कोई भी हासिल नहीं है, ड्रामे और ये फजूलियात हैं, तो आप उनको पीछे करके कुरान को आगे करें इन दिनों में। और इन दिनों में वक्त को ज़ाया नहीं करें। फिर नेकी के बाकी अमूमी काम जो हैं वो भी आप कर सकती हैं, मिसाल के तौर पे रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, जिक्र अस्कार में दरूद वगैरह पढ़ें, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ लिया करें, सदका खैरात करें, मतलब आप जो भी नेकी के काम आप समझ सकती हैं, तो मेरे कहने की क्या ज़रूरत है, आप सब लोगों को मालूम है। फ़मैं यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, फ़मैं यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रे के बराबर भी आप नेकी करेंगी तो वो भी पा लेंगी, और ज़र्रे के बराबर शर होगा तो वो भी पा लेंगी। तो अगर आप घर बैठे वाकई हज वाली कैफियत तारी करना चाहते हैं अपने लिए, तो अपने रब के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने की कोशिश करें, और वो कैसे हो सकता है, नेकियां करके। तो तमाम जो भी नेकी के काम आपको सूझते हैं, आप इस ताकत रखते हैं, इस्तेआत रखते हैं, तो वो कर डालें इन दिनों में। इसी तरह अगला काम जो आप कर सकते हैं, वो घर बैठे हज का अजर भी पा सकते हैं। वो कैसे कि आप शायद आजकल डिप्रेस होंगे, सारे लोग इधर उधर सुनाई दे रहे हैं कि फलां भी हज पे जा रहा है, फलां जा रहा है, और हम नहीं जा पाए, तो एक गम सा आता है दिल पे। लेकिन एक खुशखबरी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी कि जो शख्स फजर की नमाज़ बाजमात पढ़कर बैठा हुआ अल्लाह का जिक्र करता रहा, हत्ता कि सूरज निकल आया, फिर उसने 2 रकत नमाज़ पढ़ी, तो उसे पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। तो आप तो ये सवाब कमा सकते हैं। फजर के बाद आप उसके तकरीबन जब सूरज तलू होने का टाइम हो, आप 10-15 मिनट वेट कर लें और उसके बाद फिर आप ये नमाज़ पढ़ लें सनराइज़ का टाइम आप देख के। तो 15 मिनट्स तक आप डिले करके फिर ये नमाज़ पढ़ सकती हैं इंशाल्लाह। इसी तरह वालदैन की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखने से भी आपको पता है हज मकबूल का अजर मिलता है। तो जिन लोगों को ये मौका मिलता है तो अपने माँ बाप की तरफ जितनी दफ़ा भी मोहब्बत की नज़र से देखेंगे तो एक हज का सवाब मिलेगा। जिनको ये सहूलत मुयस्सर है, सबको तो नहीं होती, पर जिनको ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि उनके माँ बाप उनके साथ हैं या करीब में रहते हैं, तो वो उनकी ज़रूर जाके ज़्यारत करें, उनको देखें, उनकी तरफ मोहब्बत की नज़र डालें। अल्लाह ताला इससे भी उनको हज का अजर दे देगा। फिर आप कुर्बानी का ज़रूर एहतमाम करिए। देखें, जो कुर्बानी की इस्तात रखता है फिर भी कुर्बानी ना करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। और ये दिन जो होते हैं ना, इनके अंदर कुर्बानी के लिए एहतमाम करना और 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करना, ये इतना ज़्यादा फजीलत वाला अमल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी खर्च का फजल अल्लाह के नज़दीक बनिस्बत इस खर्च के जो बकरा ईद वाले दिन की कुर्बानी पर किया जाए हरगिज़ अफजल नहीं है। यानी बकरा ईद पे जो आप कुर्बानी करते हैं उसका जो फजल है, वो उसका जो अजर है, वो जो जितनी बड़ी है उतने बड़ा कोई भी खर्च नहीं है। कोई चीज़ पे अगर आप खर्च करें तो उसका अजर उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको जितना कुर्बानी करने का अजर मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते जैसे आम लोगों का ख्याल होता है कि बजाय मैं कुर्बानी करूं, इतने लोग और कुर्बानी कर रहे हैं, तो चलो मैं किसी गरीब को दे देती हूँ, चलो मैं फलां की हेल्प कर दूँ। ठीक है, वो हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को घर में कुछ मुश्किलात हैं तो उसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, बहुत अच्छा काम है। किसी मस्जिद में दे दिया, किसी और जगह आपने लगा दिया, किसी अस्पताल को दे दिया, ठीक है, वो सदका के सब काम हैं। मगर प्लीज़ अपनी कुर्बानी के पैसों से ये ना करें। कुर्बानी अलग है और वो चीज़ अलग है। इस दिन कुर्बानी से ज़्यादा प्यारा अल्लाह ताला को कोई अमल नहीं है। आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बकरा ईद के दिन इंसान का कोई अमल भी अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। उस दिन जो आप बेस्ट अमल कर सकते हैं ना, वो कुर्बानी है। हर जानवर, आपने फरमाया हर जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, खुरों और बालों समेत इंसान की नेकियों में तोला जाएगा। तो खुद आप सोचें कि आप कैसा जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहेंगे, जो मोटा ताज़ा हो, जो अच्छा सेहतमंद हो, क्योंकि उसके फिर खुर और सींग और उसके बाल भी अल्लाह ताला की हाँ वहाँ पे क़यामत के दिन तोले जाएंगे, उसके आमाल नामे में रखे होंगे, ये भी नेकी लिखी होगी और उसके मीज़ान में तुलेंगे। तो जितने ज़्यादा बड़े हों, वज़नी हों, अच्छा है ना आपके लिए, क्योंकि जानवर जितना बड़ा होगा ज़ाहिर है उसके खुर भी उतने ही बड़े होंगे, उसके सींग और उसके बाल वगैरह भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो कुर्बानी के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ पहुँच जाता है। बस अच्छे दिल से कुर्बानियाँ करो, खुश दिली से किया करो। अब कई लोग रोने शुरू हो जाते हैं कुर्बानी का, आए ये बकरे के ऊपर रहम आ रहा है, और ये हम कुर्बानी क्यों कर रहे होते हैं, कुर्बानी किससे निकला है? ये लफ्ज़ कुर्बानी, कुर्ब से निकला कुर्ब, इससे क्या हासिल होता है, अल्लाह ताला का कुर्ब, उसकी कुर्बत मिलती है। और हम ये शो करते हैं कि या अल्लाह तेरे रास्ते में आज ये जानवर हमने कुर्बान किया, लेकिन अगर कोई वक्त आया कि तेरे रास्ते में हमें अपना जान माल कुछ भी, अपना घर बार अपना कुछ भी कुर्बान करना पड़े, हम हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इन्न सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप तो कहते ही हैं ना, ये मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। या हमने कलिमात याद तो कर ली है, मगर ये नहीं पता कि कुर्बानी भी मेरी अल्लाह के लिए खुश दिली के साथ किया करें कुर्बानी, रो रो के नहीं करें, और इसको बुरा नहीं समझें कि हाय बेचारा बकरा, हाय बेचारा ये तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा है। जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो उसके ऊपर इंसान को अफसरदा नहीं होना चाहिए, कुछ दिली से कुर्बानी करें। साहबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं, आपने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। पूछा हमें इससे क्या मिलता है, फरमाया हर बाल के बदले एक नेकी। तो उन्होंने पूछा कि ऊन का क्या हुक्म है, फरमाया उनके हर रुएं के बदले एक नेकी। सुभान अल्लाह, कितनी नेकियां आप कमा लेते हैं, एक एक बाल को आप गिनने लगे तो सारा दिन में गिन भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा नेकियां आपको मिलती हैं एक कुर्बानी करके। सोचें कि एक एक बाल के बदले आपको जब नेकी मिल रही होगी तो कितनी सारी नेकियां एक दिन में आपने कमा ली, शायद करने के लिए आप जाएं तो इतनी नेकियां ना कर पाएं। इसलिए खुश दिली के साथ कुर्बानी करें, और जो लोग भी कुर्बानी का इरादा रखते हो तो ज़िलहज्जा का चांद देखने के पहले उनको चाहिए कि अपनी नाखून और अपनी बाल जो हैं वो काटनी हो तो काट लें, क्योंकि जब ज़िलहज्जा का चांद नज़र आ जाए तो उसके बाद फिर वो जब तक कुर्बानी नहीं हो जाती तो चाहिए कि वो अपने बाल और नाखून ना काटें। इसका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की ये रिवायत है कि आपने फरमाया कि जब तुम ज़िलहज्जा का चांद देख लो और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा करे तो अपने बाल और नाखून कुर्बानी ज़िबा करने तक ना काटे, ठीक है, तो चांद से पहले पहले काट लें। किसी ने हजामत बनवानी है या कोई और अपनी है तो आप देखें एहराम में भी हाजी अपने ना बाल काटता है और ना ही फिर वो अपने नाखून क्लिप करता है ना, तो हम भी तो इंशाअल्लाह ताला वही चाह रहे हैं कि हमें इस तरह से अजर मिले नेकियों का जैसे वहाँ जाने वाला हासिल करता है, तो हम कुछ ना कुछ अपना रूप वैसा ही धारेंगे। इसी तरह आपके घर में से घर का जो सरबराह है तो वो अगर कुर्बानी कर देता है तो सबकी तरफ से वो हो जाती है, और इसके लिए हमें जो दलील मिलती है वो ये मिलती है कि हज़रत जाबिर ने ईद उल अज़हा की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी, और नमाज से फ़रागत पाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मीढ़ा लाया गया था जिसे आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर और ज़िबा किया। फिर कहा इसे अल्लाह ताला ए अल्लाह, फिर फरमाया ए अल्लाह ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में से जो कुर्बानी ना कर सके उसकी तरफ से। तो सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में से जो जो कुर्बानी नहीं कर सकता, इस्तताअत नहीं रखता, उसकी तरफ से भी नियत की कि उसकी तरफ से भी या अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, मेरी तरफ से भी और ये इतने सारे और लोगों, तो पता नहीं कितने लोगों और हो सकते हैं जो कि कुर्बानी ना कर सकते हो, तो सब का हिस्सा उसी मींडे में डाल दिया। तो इसका मतलब है कि एक कुर्बानी में ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, यानी एक इंसान अपने पूरे घर वालों की तरफ से भी कुर्बानी कर सकता है, और अगर आप ताकत रखते हैं, आप ख़वातीन हैं, आपके पास पॉकेट मनी है, आपके कोई ऐसे जमा किए हुए आपने पैसे तो आपका शौक है तो मैंने आपको तो बता दिया अजर कितना ज़्यादा है, तो आप अपनी अलग से भी कुर्बानी कर सकती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप के पास जॉब हो तो तभी आप कहें कि अच्छा मेरे ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ है या नहीं। देखिए फ़र्ज़ तो कुर्बानी है ही नहीं, फ़र्ज़ नहीं है ये सुन्नत वाजिब है, यानी ज़रूर अदा करनी चाहिए, सुन्नत है ये, मगर ये फ़र्ज़ तो किसी पे भी नहीं है। मगर आपको जो मैंने अजर बताए हैं उसके बाद कोई औरत चाहेगी कि मेरा अजर रह जाए? बेशक हस्बैंड की कुर्बानी देने से हो जाएगी, अदा तो हो जाएगी आपकी तरफ से, आपको भी इंशाल्लाह अजर मिलेगा, लेकिन क्या ही बात है कि हम इतने हरीस होने की करेंगे कि मैं चाहूँ कि क्यों मेरे लिए अलग से भी हो। तो अपनी चाहे तो ख़ानदान का सरबरा भी अपने बीवी की तरफ से अलग से भी दे सकता है, वो अपने पैसों में से भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पैसे आप अपने ही इस्तेमाल करें। कोई शौहर अपनी बीवी की तरफ से और अपनी तरफ से अलग अलग भी दो कुर्बानियाँ भी दे सकता है, मगर कुर्बानी को शौक़ से करें, ये बड़ा ही नेकी का काम है और इन दिनों में किया जाने वाला काम है, तो और ज़्यादा इसकी फजीलत आपको मालूम हो गई कि कितनी ज़्यादा हो गई फजीलत इसकी। तो मुस्तहब ज़्यादा पसंदीदा तो यही है कि इंसान खुद कुर्बानी करे, खुद ज़िबा करे, लेकिन अगर ज़िबा करने के लिए नहीं भी कोई अवेलेबिलिटी इस तरह से, तो फिर किसी और से भी कहने में कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह आप बकरी भी ज़िबा कर सकते हैं, आप गाय में भी सर डाल सकती हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई भी इसके अंदर ये नहीं है कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा या कम, आप जिसमें भी आपकी इस्तेआत हो आप उस तरह से अपने लिए करें, और कभी ये ना सोचें इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा इतने गोश का क्या करेंगे, क्या फ़ायदा, यहाँ पे तो गरीब नहीं है कोई जिसको दें, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ गरीबों को ही दें, अगर रिश्तेदारों को और ख़ुद आप खुद भी खा लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। याद रखें कि गरीबों को देना तो बहुत अच्छा है, बहुत अफजल है, जाहिर है वो तो आपने कुर्बानी का बेस्ट एक काम किया कि उसके अंदर तीन हिस्से कर लिए, एक रिश्तेदारों का, एक गरीबों का और एक खुद लिया। लेकिन अगर आप ऐसे कोई लोग नहीं भी मुयस्सर पाते, अव्वल तो अगर आप ढूंढने तो ढूंढने से मिल भी जाते हैं, तो नहीं भी अगर मुयस्सर पाते तो फिर भी अगर आप खुद भी इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। फिर आप नमाज़ ईद ज़रूर अदा करें। देखिए हम नमाज़ ईद अदा करके ये शो करते हैं कि हमारा दीन जो खुशी के दिन भी हमें देता है तो हम उनको भी स्टार्ट कैसे करते हैं, अल्लाह ताला के सामने झुक के, हम अल्लाह के आगे झुकते हैं और ये दिन शुरू करते हैं। तो जी ये जो ईद की नमाज़ है ना, ये भी एक इबादत है, ये भी एक नेकी का काम है, और इसके अंदर अगर आप पाक नहीं भी हैं तब भी आप शरीक हो, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस चीज़ की तलकीन की कि ऐसी औरतें भी जो कि पाक नहीं हैं वो भी मुसलमानों की दुआओं में ज़रूर शरीक हो, कि वहाँ पे जाएं, मुसलमानों का इज्तिमा देखें, दुआ में शरीक हों, तो ये अच्छी बात है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़नी तो आप फिर भी ज़रूर जाइए, लेकिन जाएं तो प्रॉपर हिजाब के साथ जाएं, ऐसे ना जाएं कि उल्टा अल्लाह ना करे कि आप अजर की बजाय और कोई अल्लाह माफ़ी दे सज़ा के मुस्तहिक हो जाए, तो गुनाह लेकर नहीं आना, अजर लेकर आना। और फिर आप अगर सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं ईद की, तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं, अभी तो ये 10 दिन मुकम्मल नहीं हुए, आप उसके बाद क्या सोचते हैं कि उसके बाद कोई कॉन्सर्ट्स ईद के उनमें जाना, या उसके बाद कोई ईद मेलों के नाम पे जो फहाशी के काम होते हैं उनमें उनको अटेंड करना, क्या ये फिर आपको जायज़ लगता है, क्या आपको सही लगता है? ये आप 9 दिन तो नेकी के काम करते रहे, सुबह आप उठे, आपने ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने कुर्बानी की अल्लाह के रास्ते में, और आपने कहा कि मैं कोई वक्त आया तो मैं अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, तो फौरन ही आप अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम करने लगे तो आपने क्या कुर्बान किया? कुर्बानी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने एक जानवर ज़िबा कर दिया और सर से उतारा, असल में आप कुर्बानी का असल मफहूम ही नहीं समझे। कुर्बानी है क्या, क्या क्या आपने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया? क्या आपने अपनी मर्जियों को कुर्बान किया? क्या आपने किसी अपनी ऐसी अना या ऐसी कोई अपनी जो आपका दिल चाहता है बात, उसको कुर्बान किया? जो अपनी ख्वाहिश को नहीं कुर्बान कर सकता अल्लाह के रास्ते में, तो वह कल को जान क्या देगा? जो अल्लाह ताला की नाफरमानी के रास्ते से हट नहीं सकता आज, इसलिए कि मेरा दिल नहीं चाहता, मैं क्या करूं, मेरी मर्ज़ी तो ये है और मेरी मर्ज़ी वो है, वो कल को क्या चीज़ कुर्बान कर सकेगा? तो सिर्फ़ कुर्बानी के लिए पैसे भिजवा देना और ये कह देना कि हाँ हमारी कुर्बानी हो गई और हमने तो वजह से बहुत बड़ा कोई कारनामा कर दिया है, वो तो एक सिंबल है इस चीज़ का कि मैं सरेंडर करती हूँ, मैं अल्लाह ताला के सामने झुकती हूँ और मैं हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई भी चीज़ मेरी नहीं है, मेरे रब की है, और भी कोई कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो ये मैसेज लिया आपने, क्या कुर्बानी करते ही उसके बाद जो है, जब आप ऐसे फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे बेपर्दगी भी है और वहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम है और वहाँ पे नाचना भी है और वहाँ पे इस तरह की हर बेहयाई की काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे जाके क्या आप इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं कि मैं कुर्बान कर रही हूँ अपनी ख्वाहिशात को, मैं कुर्बान कर रही हूँ अपनी मर्जियों को? क्या आप ये दर्स दे रहे हैं? क्या आप ये सबक ले रहे हैं? तो सोचने की ज़रूरत है हमें कि हम कुर्बानी कह तो देते हैं मगर उसके बाद इस कुर्बानी की रूह को तो समझे हैं या नहीं। फिर और जो आप काम कर सकते हैं इन दिनों में, वो ख़ास तौर पे ख़ासुल ख़ास 9th ज़िलहज जो यौमुल अरफा है, उस दिन आपने खूब खूब दुआएं करनी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन कही जाए। जो अरफात के दिन आप दुआ करते हैं ना, वो बेस्ट दुआ है। और इसी तरह आपने फरमाया अल्लाह ताला किसी और दिन इतने लोगों को जहन्नुम से आज़ाद नहीं करते जितने अरफा के दिन। अरफात के दिन सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से आज़ादी देते हैं, और बल्कि अल्लाह ताला फ़ख्र करते हैं फ़रिश्तों पे कि देखो मेरे फ़रिश्तों, तुम लोगों ने कहा था ना ये बंदा खून बहाएगा, ये इंसान खून बहाएगा, फसाद करेगा ज़मीन पे, कहा था ना फ़रिश्तों ने जब इंसान को बनाया गया था, तो देखो मेरे इन बंदों को, ये घरों को छोड़ के आए हुए हैं, ये आहोजारियाँ कर रहे हैं, ये दुआएँ कर रहे हैं मुझसे, ये कैसे यहाँ पर मैदान अरफात में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला इस दिन फ़ख्र करते हैं। तो आप अगर उस मैदान में नहीं पहुंच सके तो घर में बैठे ही मुनाजात करें, अल्लाह ताला के हजूर खूब खूब दुआएं करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदर के अलावा शैतान किसी और दिन इतना ज़्यादा डिप्रेस, इतना ज़्यादा अफसरदा, इतना ज़्यादा रिजेक्टेड नहीं फील करता जितना के अरफात के दिन। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा रहमत नाजिल होती है इस दिन और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश होती है। तो शैतान बाकायदा उस दिन रोता है, पीटता है कि मैंने तो इंसानों को इतने दिनों से गुनाहों पे लगाया हुआ था और आज एक दिन में ये माफ़ियाँ मांग के और अल्लाह ताला की बख्शिश इन्होंने हासिल कर ली, तो मेरे उसकी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है ना। तो वो उस दिन बहुत रोता पीटता है। तो ज़रूर इस दिन को अस्तग़फ़ार के लिए मखसूस भी करें और भी दुआएँ जो भी आप करना चाहते हैं, मगर तौबा ज़रूर करें उस दिन। तो आप रोज़ा रख के, एक तो आपका रोज़ा होगा सुबहान अल्लाह, जो हज पे जाएंगे वो नहीं रोज़ा रखेंगे, जो हज नहीं कर रहे सिर्फ वो रोज़ा रखेंगे 9 तारीख को अरफा के दिन। तो आपने एक तो आपका रोज़ा होगा और फिर दुआएं, तो सुबहान अल्लाह दोनों कॉम्बिनेशन। और दिन कौन सा? अरफा का दिन जो है ही बेस्ट दिनों में से। तो इंशाल्लाह कोशिश अपनी तरफ से पूरी करनी है, अल्लाह ताला हमें ये दिन नसीब फरमाए, बेहतरीन तरीके से इनसे फ़ायदा उठाने की हमें तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इन दिनों में हमारी बख्शिश फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।